दिल्ली लौटकर प्रिया ने सबसे पहले मां निर्मला से फोन पर बात की। मम्मी, वीणा दीदी ने मुझसे वायदा किया है कि वह इस वर्ष दिसंबर में जरूर आएंगी आपसे मिलने। कोई साथ आए या ना आए, देख लेना, वीणा दीदी जरूर आएंगी। प्रिया बहुत उत्साहित थी। मां ने सुनी उसकी बात और बोली, चल बेटी, तू कहती है तो मान लेती हूँ। वैसे तो हर बार जब भी उससे बात होती है वह यही कहती है। निर्मला समझती थी कि वीणा अपने मन की असली बात तो किसी से कहती नहीं है। प्रिया को यह कहा है तो क्या वास्तव में वह आएगी? यह तो समय ही बताएगा। यदि ना कहती तो प्रिया उसे बार बार कहकर जिद करती। बात को कम से कम करने का सबसे सरल उपाय है सामने वाले की हां में हां मिला देना। तुम अपनी कहो प्रिया, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? निर्मला ने आगे बात बढ़ाई। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मम्मी। दीदी के पास रहने के बाद और भी मजे आए। वीणा दीदी जहां रहती हैं वहां तो कुछ भी नहीं था, बस प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त। और अमेरिका तो बस कुछ ना पूछो, हमारे लिए तो स्वर्ग समान था। लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और फिर डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नीलैंड में रहे हम 7 दिन और वह 7 दिन तो बच्चों के साथ साथ हमारे लिए यादगार दिन हैं। लॉस वेगास जैसा शहर तो देखकर मन को लगा हम जैसे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई काम नहीं करता, जहां सिर्फ आनंद लूटते हैं लोग। प्रिया के शब्दों से ही मां निर्मला को अंदाज हो गया था कि प्रिया बहुत खुश है। बेटी खुश तो मां की खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे में वह बोली, चलो बेटी, सब आराम से सुनेंगे तुम्हारी बातें। अभी तो कुछ दिन और हैं बच्चों के स्कूल खुलने में, तुम देहरादून आने का जल्दी से प्रोग्राम बना लो। हाँ मम्मी, जरूर आएंगे। 3-4 दिन जरा अपनी थकावट उतार ले, फिर आ जाएंगे 2-3 दिन के लिए। अभी तो स्कूल खुलने में पूरे 15 दिन बाकी हैं। प्रिया भी मां से मिलने को बेताब थी। अच्छा मां, डैडी जी से बात कराओ, प्रिया ने कहा मां निर्मला से। ठहरो बेटी, आवाज लगाती हूँ, आजकल तो कुछ सुनते नहीं, और सुनते हैं तो मन में आए तो जवाब दे देते हैं, मन में आए तो चुप ही रहते हैं, निर्मला ने कहा। तब प्रिया ने कहा, ऐसा हो जाता है मां, इस उम्र में आप उनसे बातें किया करो। अरे बेटी, और कौन है मेरे पास तुम्हारे डैडी के सिवा? पर मैं भी तो सारा दिन काम में जुटी रहती हूँ। और फिर चलो छोड़ो, लो आ गए तुम्हारे डैडी, लो कर लो बात। निर्मला ने फोन शायद पन्नालाल को दे दिया था। प्रिया को दूसरी तरफ चुप्पी सुनाई दी, बोली, हेलो 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 डैडी जी, नमस्ते। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वह फिर बोली, हेलो डैडी, आप सुन रहे हैं ना, नमस्ते। उत्साहित प्रिया ने फिर कहा, आवाज स्वयं ही ऊंची हो गई थी। फोन ठीक था, उसे दूसरी तरफ निर्मला की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अरे प्रिया है आपकी बेटी, बात करो उससे। प्रिया सुनकर चौंकी, मम्मी शायद कुछ छिपा रही हैं। मम्मी जरूर ही कुछ छिपा रही हैं। इतने चुस्त दुरुस्त डैडी को भला यह कहने की क्या जरूरत कि प्रिया है आपकी बेटी है। तभी आवाज आई दूसरी ओर से, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक साथ बोल गए सब कुछ पन्नालाल। अरे डैडी, आपकी आवाज कुछ बदली लग रही है, कैसे बोल रहे हैं आप? प्रिया धीरे धीरे बोलकर जैसे समझाना चाह रही हो। और उधर पन्नालाल की आवाज फिर आई, प्रिया प्रिया, मैं ठीक हूँ। डैडी, मम्मी को फोन दो। घबरा गई प्रिया, माँ कुछ छिपा रही है, सोचा उसने। फोन पर डैडी तो रट लगाए थे, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। कुछ देर बाद मम्मी ने फोन स्वयं ले लिया, तुझे कहा था ना बेटी, आजकल अपने ही धुन में रहते हैं। निर्मला तो जैसे नॉर्मल थी, ऐसा कैसे लग रहा है आपको मम्मी? डैडी तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, 1.5 महीने में इतना फर्क आ गया है, चेकअप करवाया है क्या? प्रिया घबरा रही थी। अरे बेटी, डॉक्टर को तो कल ही दिखाकर आए हैं। वह तो कह रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कभी शुगर के घटने से थोड़ा फर्क आ जाता है। अब तू खुद समझ, डैडी तेरे 85 वर्ष के हो चले हैं, माँ ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन 2 महीने पहले के डैडी की आवाज में और आज की आवाज में तो बहुत अंतर है। आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। मैं अभी आ रही हूँ दिल्ली से आपके पास। प्रिया को लगा जैसे मम्मी एकदम उसे कुछ नहीं बताना चाह रही। अरे बेटी, ऐसा मत सोच, तू आएगी ना अगले सप्ताह, स्वयं देख लेना। अभी इतने दिन बाहर लगाकर आई है और सफर की थकावट है, घर की भी सफाई है, आराम से आ जाना। निर्मला की बात के लहजे से लगने लगा प्रिया को कि जरूर कुछ हुआ है पीछे से, लेकिन मां निर्मला ने कुछ नहीं बताया। सुबह उसकी गीता से भी बात हुई थी, उसने भी कोई ऐसी बात नहीं बताई। डैडी का हाल तो उससे भी पूछा था, उसने भी यही कहा था, सब ठीक है, वह तो प्रिया से कुछ नहीं छिपाती, फिर क्यों उसे अभी सब अटपटा लग रहा है। पन्नालाल अपने आप में ही खोए रहते थे, अपनी ही दुनिया में लीन। बचपन से ही देखा था बच्चों ने, वह सुबह 5 बजे उठ जाते थे और 7 बजे उनकी पूजा शुरू हो जाती थी। पहले पहल यह पूजा आधा घंटा लेती थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ पूजा का समय हर वर्ष के साथ 5 मिनट बढ़ता चला गया। रिटायरमेंट के बाद तो कम से कम 2 घंटे की यह नियमित दिनचर्या बन गई थी उनकी। बेटियों की शादी हो जाने के बाद तो जैसे पन्नालाल का जीवन घर के मंदिर में ही बीतने लगा था। जब समय मिला बस वहीं उसी कोने में अपने गणेश जी की मूरत के सामने जा बैठते थे, वही इनके प्रिय सखा थे। कभी कभी निर्मला को बहुत गुस्सा आ जाता था, खाने के समय में खाने की सुध नहीं और जाकर पूजा घर में गायत्री मंत्र का जाप किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, कुछ परिस्थितियां करवा देती हैं, कुछ स्वयं करने का मन करता है और कुछ वक्त के साथ साथ व्यक्ति का स्वभाव नए नए रूप धारण करता रहता है। कभी कभी यह बदलाव कब आया, कैसे आया, इसका स्वयं को भी पता नहीं लगता, साथ रह रहे अपने प्रिय को भी नहीं होता। काफी अंतराल के बाद मिले दूसरे को इसका आभास तुरंत हो जाता है। प्रिया ने तो अभी बात ही की थी, उसे तो एकाएक लगा कि डैडी की तबीयत कुछ गड़बड़ है, मम्मी छिपा रही है या फिर उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। गीता से भी दोबारा बात हुई, उसने तो यही कहा कि डैडी तो अपनी धुन में रहते हैं, कभी कभी तो अच्छी तरह बोलते हैं, कभी कभी तो किसी भी बात का उत्तर नहीं देते, अभी मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं भी तो सप्ताह में 1-2 बार ही जा पाती हूँ। हाँ शरीर से तो बिल्कुल ठीक है डैडी जी। चुप रहना या बात का जवाब नहीं देना मुझे अटपटा नहीं लगा, अब ध्यान दूंगी। लेकिन प्रिया को तो चैन नहीं था, वह तो और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसने अमित को बात बताई और अगले ही दिन वे 4-5 दिनों के लिए देहरादून जा पहुंचे। प्रिया अपने डैडी पन्नालाल के सम्मुख बैठकर उन्हें निहार रही थी। बहुत प्यार आ रहा था उसे उनके चेहरे पर छाई मासूमियत को देखकर। वह चुप बैठे हुए कहीं और खोए हुए थे। प्रिया ने महसूस किया था कि अब वह अपने आप से कुछ नहीं मांगते, समय पर खाना मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी कोई शिकायत नहीं। पहले तो ऐसा नहीं था, 1 मिनट की भी देरी नहीं सहन करते थे। समय पर खाना नहीं मिला तो बस फिर कोई उन्हें खाने के लिए राजी नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उन्हें खाने के लिए जब बोलो वह चुपचाप आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते थे। प्रिया ने यह भी देखा कि जब तक उन्हें स्वयं कोई ना रोके वह लगातार खाना खाते रहते थे। मम्मी आपने महसूस नहीं किया, डैडी जी स्वयं से कुछ नहीं करते, ना खाना खाने को और ना ही खाना बस करने को। आप उनकी प्लेट में डालती जा रही हो रोटी और वह खाए जा रहे हैं। उनकी खुराक तो कभी इतनी नहीं थी, 3 रोटी से अधिक तो कभी खाते नहीं थे। अभी मैंने देखा 7 रोटी खा चुके हैं और चुप बैठे हैं। अभी और देंगी आप तो वह भी खा जाएंगे। प्रिया थोड़ी नाखुश सी थी, मम्मी का यह सेवा भाव उसे अखर रहा था। क्या बताऊं बेटी, मुझे तो यही लगता है छोटी छोटी रोटी है, कहीं भूखे ना रह जाएं। और फिर कुछ कहते भी तो नहीं, मुझे तो यही लगता है कि भूख है तभी खाए जा रहे हैं। ऐसे भला बिना भूख के कोई खाए थोड़े जाता है। माँ की बात शायद ठीक होती यदि कोई गबरू जवान व्यक्ति खाना खा रहा होता। प्रिया को यह बात अच्छी नहीं लगी माँ की। आप पिछली बार अस्पताल गई थी, डॉक्टर को बताया? पूछा उसने निर्मला से। डॉक्टर क्या करते हैं बेटी, इन आर्मी अस्पताल के डॉक्टरों की क्या कहूं, बस सरसरी निगाह से देखते हैं, पूछते हैं और कह देते हैं सब ठीक है। ब्लड प्रेशर और शुगर की जो दवा पिछले 10 वर्षों से चल रही है वही दोबारा लिख देते हैं। सरल शब्दों में माँ ने उत्तर दिया प्रिया को। वह तो ठीक है मम्मी, मगर आपको भी तो बताना चाहिए कि आजकल डैडी चुप रहते हैं, बात का जवाब बड़ी मुश्किल से देते हैं। मैं चलूंगी कल आपके साथ, प्रिया ने कहा। कल तो डॉक्टर होगा नहीं बेटी, और कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि कल ही ले जाएं। 10 दिन बाद फिर से जाना है, तभी सब विस्तार से बता दूंगी, तू अधिक चिंता ना कर। उम्र भी तो देख अपने डैडी की, बुढ़ापे में याददाश्त भी तो कमजोर पड़ जाती है। निर्मला जैसे जानती थी कि प्रिया के डैडी को और कुछ तकलीफ नहीं, बस उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है। लेकिन प्रिया को चैन नहीं था, उसने यही सारी बात अमित से कही और शाम को वह फिर से अपने पिता के पास जाकर बैठ गई। डैडी आप आजकल मंत्र जोर से क्यों नहीं बोलते, पूछा उसने। लेकिन जवाब नदारद। डैडी जी पूजा करते हो, फिर पूछा उसने। हां करता हूं, कहा पन्नालाल ने। मंत्र नहीं बोलते? बोलता हूं, ओम त्र्यंबकम यजामहे भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यम् ओम ओम। पन्नालाल को जैसे नहीं पता कि वह क्या बोले जा रहे हैं। ये क्या, आप तो 2 मंत्रों को मिक्स कर रहे हैं। प्रिया चौंक उठी, उसने झट से जान लिया अपने डैडी जी की कमजोरी को। कर रहा हूं मंत्र मिक्स, ये मिक्स विक्स क्या है? पन्नालाल की जुबान एकाएक खुल गई थी। कोई और देखे पन्नालाल को बात करते तो यही कहता कि बुढ़ापे में बचपन लौट आया है, शब्द बच्चों के उच्चारण की तरह निकल रहे थे उनके मुंह से। प्रिया को दुलार भी आ रहा था और मन से वह परेशान भी हो रही थी। डैडी की चुप्पी को उनकी आदत समझकर सब गड़बड़ हो रहा था, किसी को इसकी खबर नहीं थी। डैडी राजा राम कौन थे, पूछा प्रिया ने। कौन थे, उल्टे पूछ लिया पन्नालाल ने। आप बताओ, फिर कहा प्रिया ने। आप बताओ। ये क्या, जो पूछ रही थी प्रिया वही दोहराने लगे थे पन्नालाल। डैडी जी मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बताओ मुझे राजा राम कौन थे। प्रिया ने प्यार से विवल होकर पन्नालाल के गालों को सहलाया। राजा राम राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, और क्या, एकाएक जवाब दिया पन्नालाल ने, जैसे उन्हें लगा पूछने वाला इतनी सी भी बात नहीं जानता। तब तक अमित जो बच्चों के साथ बाजार गया हुआ था आ पहुंचा। बाप बेटी के बीच होता वार्तालाप वह भी सुनने लगा था। बच्चे भी वहीं बैठ गए। नाना से अपने बच्चों की बात भी कम ही होती थी, सभी अपनी नानी के चहेते थे। सच बात तो यह है कि पन्नालाल स्वयं ही अपनी घर में उपस्थिति में ही विरक्ति को खोजते थे। वह बच्चों के साथ बैठे रहते, घंटों उनका वार्तालाप सुनते, उनकी हंसी ठिठोली को देखते। बच्चे हंसते तो वह भी हंस देते, बच्चे झगड़ा करते तो वह उन्हें एकदम रोक देते। गुस्सा नहीं करते थे लेकिन उनकी आवाज सुनकर सब झगड़ा बंद कर देते थे। दूसरे कमरे में बैठी नानी माँ को ही सभी अपनी फरियाद करते थे और बच्चों के आने पर नानी माँ तो उनकी दीवानी बनी रहती थी। उसे रसोई घर से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, बस हर घड़ी कोई ना कोई पकवान बनता रहता था। ऐसे में घर में जब दोनों अकेले रह जाते तो आपस में उनका वार्तालाप ना के बराबर होता था। निर्मला अपने काम में मग्न रहती, आस पड़ोस की खबर में व्यस्त रहती, बच्चों को नियम से पत्र लिखती और दिन भर बीच बीच में समय के अनुसार टेलीविजन पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखती रहती। ऐसे में समय बीतता रहा और पन्नालाल की चुप रहने की आदत में, पूजा पाठ की व्यस्तता में, घर में बागवानी करते रहने के शौक में, शाम को टेलीविजन पर खबरें सुनने के नियम में कब परिवर्तन आया इसकी खबर किसी को नहीं लगी। शरीर में दिखने वाली बीमारी की खबर तो बिना बताए भी लग सकती है, लेकिन चुप्पी की आदत में, शिकायत ना करने के नियम में कब परिवर्तन आया किसी को खबर नहीं लगी। बेटियां आती थी साल में एक आध बार और वह भी दो तीन दिन के लिए। सभी अपनी अपनी कहानियां लिए आती थी और माँ से उसकी कहानियां सुनने। ऐसे में डैडी के बचपन के रोब में कब उनके डैडी में परिवर्तन आ गया बेटियों को भी पता नहीं लगा। वास्तव में इस घर में पन्नालाल की उपस्थिति की खबर सभी को थी, पर यह घर वास्तव में बेटियों की बातों और माँ के वार्तालाप से ही आबाद रहता था। उसमें पन्नालाल की उपस्थिति एक बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति भर थी। इस घर के बड़े बुजुर्ग में इतना परिवर्तन देखकर सभी हतप्रभ रह गए थे। निर्मला को भी पन्नालाल की मानसिक स्थिति देखकर बहुत दुख पहुंचा। एकाएक अपने पति में इतना परिवर्तन देखकर उसे स्वयं पर ही क्रोध आ गया। आंसू भी आए उसकी आंखों में। मैं तो समझती थी ये इनकी आदत है, प्रिया तुमने तो एकदम से पकड़ ली इनमें आई इतनी बड़ी परेशानी, देखते ही देखते इतना बड़ा परिवर्तन आ गया इनमें। निर्मला को तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था। अरे मम्मी आप क्यों रोती हैं? सच है यह उम्र के साथ ही होता है और इसमें दोष आपका तो नहीं, डैडी ही चुप रहते थे, चुप्पी में ही यह बदलाव आता गया। शरीर से तो डैडी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इनको, बस अब चुप हो जाएं आप, हम दिल्ली ले चलते हैं आपको। प्रेम को भी कहते हैं वह भी छुट्टी लेकर आ जाए, डॉक्टर को दिखाएंगे, डैडी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो, अमित ने ढाढ़स बंधाया मां निर्मला को। तब स्निग्धा अपने नाना की ओर आमुख हो बोली, नाना जी मैं बताओ कौन हूं, बताओ ना तुम कौन हो, तुम मेरी बेटी हो प्रिया, पन्नालाल ने उत्तर दिया। नहीं नाना जी, प्रिया तो मेरी मम्मी है, आपके पास बैठी है, स्निग्धा ने उत्तर दिया। उस छोटी बच्ची को तो अपने नाना से खेलने का अवसर मिल गया था। डैडी आप भूल रहे हैं, ये तो गुड़िया है, आप गुड़िया कहते हैं इसे, मैं हूं प्रिया आपकी बेटी। प्रिया पिता के प्रेम में वशीभूत थी, भावुक हो चली थी। मेरी बेटी? मेरी बेटी तो वीणा है, वीणा है, कहां है वह? एकाएक पन्नालाल तो प्रिया को देखते हुए वीणा को खोजने लगे थे। वीणा की याद हो आई थी, वीणा की याद, वीणा तो कनाडा में है, मैं वहीं तो गई थी, उसी से मिलकर आई हूं। प्रिया को आशा बंधी कि डैडी अपने वर्तमान में लौटकर बात करने लगेंगे। वीणा कनाडा में है? कनाडा इंग्लैंड में है, वीणा आएगी, मेरी बेटी वीणा आएगी, पन्नालाल कुछ का कुछ बोल रहे थे। हाँ आएगी डैडी, प्रिया के आंसू नहीं रुक पा रहे थे, आंखों से बहने लगे। लेकिन नाना जी वीणा मासी कनाडा में है, कनाडा इंग्लैंड में नहीं होता, स्निग्धा को नाना जी के ज्ञान पर अचंबा हो चला था। नाना जी तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश की ग्रामर उनकी बहुत अच्छी थी, दुनिया देश की किताबें पढ़ते थे, घर की अलमारी किताबों से भरी थी। सोच रही थी स्निग्धा, मम्मी तो कहती थी हर बार डैडी से कहूंगी ढूंढ कर देंगे वे अपनी अलमारी से ग्रामर पर लिखे अपने नोट्स, और आज नाना जी कैसी बात कर रहे हैं, न ग्रामर, न भूगोल, न जीके, क्या हो गया है नाना जी को? प्रिया मां निर्मला से कह उठी, तब आप अब यहां अकेली नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ दिल्ली चलेंगी। आदेश भरे शब्द थे उसके। मैं चलूंगी बेटी, अभी कल कैसे जाऊंगी, तू चिंतित ना हो, गीता है ना यहां, वह तो आती रहती है, एकदम से घर बंद तो नहीं कर सकती, कुछ दिन में आ जाऊंगी डैडी के साथ। अभी गीता आती होगी, उसे भी तो पता नहीं लगा। उसे क्या, मुझे भी तो पता नहीं लगा, वह तो खुद से इतनी व्यस्त है, हफ्ते में 2-3 बार ही आती है। लेकिन बेटी सच बात तो यह है कि तेरे डैडी की चुप्पी की आदत से ही सब कुछ गड़बड़ हुआ है। निर्मला के आंसू अब थम नहीं रहे थे। कुछ देर में वह संभली और प्रिया से कहा, चलो ठब, डैडी को खाना देते हैं और दवाई देकर सो जाने को कह इनको, तेरी बात मानकर सो जाएंगे। निर्मला तब रसोई में चली गई और प्रिया चुपचाप से अपने डैडी को निहारती हुई, उनके हाथ को सहलाती हुई उनके पास बैठी रही। यह कैसा जीवन है, चलते फिरते रहो सब ठीक रहता है, बिस्तर पर पड़ जाओ तो धीरे धीरे उठ सकने की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। हां, यदि मस्तिष्क साथ दे रहा हो तब भी अपने बीतते हर दिन की गिनती रख सकते हैं हम, और यदि यह मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए तब शेष कुछ नहीं रहता। 2 दिन का बच्चा संवेदनशील होता है, मां का स्पर्श वह भी महसूस करता है, लेकिन यहां तो 2 दिन के बच्चे की बात नहीं थी, यहां बात थी 85 वर्ष से ऊपर हो चले पन्नालाल की। दुनिया सारी देखी भाली थी उनकी, ज्ञान का भंडार था उनका मस्तिष्क, और आज वही पन्नालाल एक बालक की भांति अपने मस्तिष्क की संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता ही खो बैठे थे। कहां गई वे सब भावनाएं, मन में क्या है कोई नहीं जानता, मस्तिष्क बाहर वालों के लिए निष्क्रिय है, भीतर ही भीतर कुछ सोचता है कोई नहीं जानता। हां, इतना जरूर दिखता है कि कभी कभी जैसे रुकी हुई मशीन चल पड़ती है और शब्द निकलता है एक ही, मेरी बेटी वीणा, वीणा कहां है? ऐसे में कोई यदि कहे कि आएगी वीणा, जल्दी आएगी, यह शब्द ग्रहण करने योग्य भी नहीं मस्तिष्क पन्नालाल का। जो कहता है वह कह देता है उनका मन, सुनने समझने की शक्ति जैसे नहीं थी अब। यह कैसा रूप है मानव का, यह कैसे रंग है जिंदगी के, संवेदनशील ही समझ सकता है ऐसे मन को, और अमित जैसे समझ रहा था पन्नालाल की दशा को। महीने में 1-2 बार अब वह और प्रिया देहरादून हो आते थे, सुबह शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ते थे, दोपहर देहरादून पहुंच जाते, एक रात रुककर अगले दिन शाम को शताब्दी से वापस दिल्ली चले आते थे। वे कुछ कर तो सकते नहीं थे, बस दिन भर घर में बैठे रहते, पन्नालाल की गतिविधियों को देखते रहते। हां, मां निर्मला को उनके आने से सहारा मिल जाता था, उनके अकेलेपन में कोई साथी आ मिलता था, पन्नालाल की दिनचर्या के विषय में उनकी बातें सुन लेता था, मां का दिल इसी बात से हल्का महसूस करने लगता था। गीता देहरादून में थी, लगभग रोज आती थी, उसका पति नवीन भी उसके साथ ही आता था, दोनों से जो कुछ भी बन पड़ता वह सब वे करते थे। पन्नालाल को सप्ताह में 1 बार अस्पताल ले जाने का जिम्मा भी नवीन ने ले रखा था, लेकिन जो पास रहता है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे तो सारी दिनचर्या की खबर होती है। ऐसे में प्रिया के आने से मां निर्मला को अपनी व पन्नालाल की दिनचर्या की बातें बताते हुए बहुत अच्छा लगता था। मन चंचल है कितना उसका, जो सुकून पाता है जब जब कोई बाहर से आकर उसका हाल जानने को उत्सुक होता है। अमित ने वीणा से बात भी की थी, पन्नालाल की दशा की बात भी बताई थी, वह सुनकर चुप हो गई थी। उसकी भीगी आवाज सुनकर अमित को लगा था कि वह रो रही है, लेकिन अरुण जैसे इन संवेदनाओं से परे था। वह सुनकर भी नॉर्मल रहा, केवल इतना ही बोला था, यह तो आम बात है, यहां कनाडा में तो हर दूसरा बूढ़ा व्यक्ति अपनी सुध-बुध भूल जाता है। वीणा ऐसे ही ओल्ड एज होम में तो काम करती है, उसे क्या समझाने की जरूरत है, अब वह बूढ़े हो चले हैं तो यह सब तो होगा ही। यह कैसी भावनाएं थी जो अरुण व्यक्त कर रहा था। वह तो इस परिवार की भावनाओं से परे है, उसे जैसे कोई चिंता नहीं। वह एक बूढ़े आदमी से ज्यादा महत्व नहीं दे रहा था पन्नालाल को, लेकिन वीणा वह तो उसी बूढ़े आदमी की बेटी है, उसे तो खबर होनी चाहिए, खबर सुनकर चिंता भी होनी चाहिए, और चिंतित है यदि तो उसे अपने पिता से मिलने भी आना चाहिए। ऐसा कुछ सोचते हुए उसकी कलम चल उठी और उसने अंग्रेजी में चंद शब्द लिख दिए जो एक कविता के रूप में ढल गए थे। अमित ने पढ़ा उनको, प्रिया को दिखाया, पढ़कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमित ने यूं लिखा था, तुम्हारे पिता अब ठीक नहीं हैं, सारी यादें उनकी खो गई हैं, बस तुम ही याद आती हो, वह कुछ नहीं करते, बस तुम्हें याद करते हैं, ना शब्द कोई शेष बचे हैं, ना भावनाएं कोई व्यक्त करने को, बस तुम्हें याद करते हैं। 86 वर्ष के हो चले, पर अब व्यक्त भाव हैं 6 वर्ष के बालक से, तुम्हें पुकारते हैं, तुम्हें चाहते हैं, सारा परिवार पास है, तुम्हारी कमी खलती है, 16 वर्ष बहुत लंबे होते हैं, राजा राम को वनवास मिला था 14 वर्ष का, तुम्हारे तो बीत चले हैं 16 वर्ष, तुम्हें तो किसी ने वनवास नहीं दिया, तब यह क्यों तड़प रहे हैं। तुम गई थी एक दुल्हन की भांति, एक आज्ञाकारी पुत्री की भांति, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारे भी एक बेटा है और सुंदर बेटियां, वह तो खाली मन से हैं, बच्चों की तरह खेलते हैं, कभी कभी ढूंढते हैं अपनी बिटिया को, प्यारी सी गुड़िया को, प्यारी सी बिटिया को, वह तुम्हें शायद ना पहचान पाए, वह तुम्हारा स्वागत शायद ना कर पाए, पर तुम्हारी जरूरत है उन्हें, वह तुम्हें मिलने को बेताब है, आओ उन्हें मिल जाओ, अपना चेहरा दिखा जाओ, तभी शायद वह शांति से अपनी यात्रा पूरी कर सके। मुझे नहीं लगता प्रिया कि वीणा दीदी इतनी जल्दी आएंगी, अमित ने फिर अपनी सोच से अवगत कराया प्रिया को। ऐसा मैं नहीं मानती, दीदी अब जरूर आएगी, डैडी की दशा को समझेगी तो देखना, वह जरूर आएगी। प्रिया के विश्वास को देखकर अमित ने भी तब यही कहा, चलो तुम्हारी सोच ही ठीक हो, शायद अच्छा ही होगा यदि वह आ जाए। बात यहीं समाप्त हो गई, वे फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए।